آياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پھر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. یہ بھی بڑی گہری بات ہے اور یہ وہ بات ہے جو انسان کو بڑی تسلی بھی دیتی ہے. اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی کو اس کی وسعت سے مگر جتنی اس کی وسعت, یعنی اس کی وسعت سے زیادہ نہیں کسی کو تکلیف دیتا. ایک معنی تکلیف کا, دوسرا معنی مکلف کرنے کا, تو دونوں معنی دیکھ لیتے ہیں. یعنی ایک معنی کے مطابق کیا بنتا ہے کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا, یعنی نمبر ون یہ کیا, اللہ تعالیٰ ایسی ذمہ داریاں نہیں ڈالتا جس کا بوجھ اٹھانے کے اندر انسان کی طاقت ہی نہ ہو, مگر جتنی اس کی وسعت ہے نا, یعنی جس کی جتنی اس کی وسعت سے مطلب ہے جسمانی طاقت یا عقل کی طاقت یا جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق ہی اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ماں باپ کی فرمان داری ہے, یہ تو اللہ نے ایسی ذمہ داری ڈالی ہم سے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کا خیال کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ تو صلہ رحمی, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو ایسی ذمہ داریاں اللہ نے ڈال دی ہمارے اوپر. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ بچے کو پالنے کی ذمہ داری ایسی نہیں ہے کہ ہم اٹھا نہیں سکتے. تو جتنی اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے نا, وہ اتنی ہی ہے جتنی ہماری وسعت ہے, جتنا ہم واقعی ہم کر سکتے ہیں. نمبر ٹو, جتنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے, جتنے قانون بنائے ہیں, جتنی باتیں ہمیں قرآن پاک میں کہی ہیں, وہ سب ایسی ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں, عمل جن پہ کر سکتے ہیں. اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے نا, اب نماز ہے مثلا, نماز میں ایک بندے کی کیپیسٹی ہے جو صحت مند بندہ ہے وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے, سب سارے ارکان اس کے پورے کر سکتا ہے. ایک بندہ بیمار ہے, اس کی نہیں کیپیسٹی ہے, اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بیٹھ کے پڑھ لے. جو اتنا ہی بیمار ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے. لیٹنے والے کو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کھڑے ہو کے پڑھنی, کسی کے پاس ٹانگیں ہی نہیں ہیں, وہ معذور ہے, اس کو نہیں فرمایا کہ تم نے کھڑے ہی ہونا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے سہولت دی اس مطابق جیسی انسان کی کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق ہی حکم دیا. کوئی بیمار ہے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بےچارا, اس کو یہ نہیں کہا چاہے تم بیمار ہو تم نے روزہ رکھنا ہی نہیں, اس کی نہیں کیپیسٹی, اس کو فدیہ دینے کا کہہ دیا. تو جو اللہ کے جو بھی حکم ہے نا, ہمیشہ یاد رکھے, یہ کہنے سے پہلے ہم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, یاد رکھے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ایسا آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں تو نہیں یہ کر سکتی, آئے نہیں ہمارے سے. اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ انسان کی طاقت میں ہوتا ہے اس کو کرنا, تبھی اللہ نے دیا. اللہ یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا, یا اس کو نہیں پتا کہ اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے میں اس کے اوپر ایسا کیوں ڈالوں, ایسا حکم کیوں دوں, کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس نے ایسے ہی دے دیے. اس لیے ہر حکم جو اللہ کا ہے, انسان میں کیپیبلٹی ہے, وہ سب کا مطلب کیپیبلٹی ہے اس کو پر عمل کرنے کی, تبھی اللہ نے دی. نمبر تھری بات, جتنی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے ان کو اٹھانے کی, تب اللہ اس کے اوپر آزمائش وہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی انسان کہتا نہیں ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں. آپ یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی قابل سمجھا ہوگا تو آپ کے اوپر وہ آزمائش ڈالی, اللہ نے ایسے ہی نہیں ڈالی, اتنا ہی اجر بھی ہے, پھر اجر بھی رکھتی ہے اس کا. تو انسان یہ نہ سوچے کہ یہ میرے اوپر ایسی آزمائش آئی ہے اس کو تو میں اٹھا نہیں سکتی, نہیں, اپنے آپ کو اس میں انسان کی کمزوری دور ہوتی ہے. یہ آیت پڑھ کے انسان یہ سوچے کہ اللہ نہیں ڈالتا کسی کے اوپر ایسی کوئی تکلیف جو وہ اٹھا نہیں سکتا, اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہی ہوگا تو اس آزمائش میں ڈالا. ایوب علیہ السلام کو دیکھیں, 18 سال کوئی کم ہوتے ہیں, 18 سال بیماری میں رہے, سب کچھ چھین گیا, کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس, کتنی بڑی آزمائش تھی. اسی طرح حضرت ام سلیم کو دیکھیں, بچے کی وفات کتنا بڑا صدمہ ہوتی ہے, کتنا بڑا صدمہ, بچہ بیمار تھا, فوت ہو گیا, اس کو نلا دھلا کے ایک طرف ڈال دی, شوہر گھر آئے, کھانا ان کو دیتی ہیں, رات کو حق کے زوجیت بھی ادا کرتی ہیں, صبح کو خامد سے کہتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی امانت اپنی رکھوائے اور واپس لینا چاہے تو کیا کریں گے,
वो कहते हैं तो इसमें क्या बात है, किसी ने अपनी अमानत रखवाई है, जो जो वापस लेने चाहेगा तो वापस दे देंगे। ने कहा फिर आपका बेटा अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने वापस ले लिया। अल्लाह अकबर, माइंड ब्लोइंग ये चीज है कि एक औरत के अंदर इतना हौसला। वो हौसले वाली थी तो अल्लाह ने उनके ऊपर ये आजमाइश भी डाली। सुबहान अल्लाह, तो हिम्मत वालों के ऊपर उस तरह की आजमाइश है। तो ये इंसान नहीं कह सकता नहीं मेरी तो हिम्मत नहीं, मेरे साथ ये क्यों ऐसा हो गया। नहीं, तब ये सोचा करें ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह नहीं डालता किसी नफ्स के ऊपर कोई उसकी वुस्सत से ज्यादा, वो डालता ही नहीं है उस पे बोझ। फिर चौथी चीज इसके अंदर क्या है कि अल्लाह मुकल्लफ नहीं करता किसी को, यानी अल्लाह ताला किसी को भी उसकी वुस्सत से ज्यादा उसकी जवाब यानी उसके ऊपर उसका मुहासबा नहीं करेगा या उससे पूछगिछ नहीं करेगा। कैसे के मतलब है कि जितना इंसान को अल्लाह ताला ने जितनी नियमतें दी हुई है या जितनी उसको फैसिलिटीज दी हुई है या जितना उसको जिंदगी दी है या जितनी उसको सेहत दी है, उसके मुताबिक ही उसकी जवाबदेही होगी, उसको मुकल्लफ ठहराया जाएगा। लेकिन जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया वो ज्यादा मुकल्लफ है। मसलन है किसी को माल ज्यादा दिया, उसके मुताबिक उसकी पूछगिछ है, उसके मुताबिक उसकी जवाबदेही, उसके मुताबिक वो मुकल्लफ का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है, वो उतने का ही वो रिस्पॉन्सिबल है, उससे उतने का हिसाब लिया जाना है। जिसके पास कम है उसका हिसाब भी कम होगा, इसी तरह जिसके पास इल्म ज्यादा है उसका हिसाब ज्यादा है, इसके पास इल्म कम है उसका हिसाब भी कम है, उस मुताबिक होगा। यानी ये नहीं कहा उसके बाद बैठ जाएंगे नहीं मैं तो लेती ही नहीं हूँ इसलिए मेरा हिसाब कम। अल्लाह को पता है ना कि इसके अंदर सलाहियत थी, इसने जानबूझ के नहीं दिया ताकि इसको अमल ना करना पड़े। तो अल्लाह तो देख रहा है हर चीज, वो तो दिलों के अंदर के हाल जानता है। आपका मामला किससे, किसी इंसान से थोड़ा ही है कि इस तरह डॉज करेंगे। इसी तरह किसी की जहनी सलाहियत ज्यादा होती है, बड़ा अकलमंद होता है, उसका हिसाब उस मुताबिक है। अल्लाह ताला ने कहा ना मैंने तुझे इतना जहन दिया था तूने क्या किया। और जिसके पास कम है जहन, कई लोगों को के पास नहीं इतना माइंड अच्छा होता, अब ये भी हर एक कहने लगता नहीं नहीं जी मेरा हाफजा तो बड़ा ही कमजोर है, हाँ क्या करें हम बड़ी चीजें भूल जाती हैं। ये भी हमारे बहाने होते हैं जो सिर्फ इल्म के रास्ते में ही आते। बाकी जो 10 साल पुरानी भी बातें पूछ लो तो हम फर फर बताने लगते हैं, हाँ ये जरूर पूछ लें कि वो फलाने ने आपको फलां वक्त में आपके साथ क्या ज्यादती की थी, क्या कहा था आपको, एक एक हर्फ बार हर्फ बता देंगे, उसने फिर ये बोला मैंने ये कहा फिर उसने ये कहा, पूरे डायलॉग याद होंगे 10 साल पुराने के। ये जब इल्म आता है तो फिर कुरान में हमें नहीं कुछ याद आता, ये नहीं फिर सही बात। अल्लाह को तो पता है ना उसको उसने कितनी कैपेसिटी किसको दी है, किसका कैसा जहन था, किसके पास माल कितना था, किसकी सिचुएशन कैसी थी। आप देखिए हम इंसान है ना, हम आप सबको एक ही समझ लें, एक ही उससे हांकते हैं, डंडा तो नहीं कह सकते मगर एक ही रूल सबके लिए रखते हैं, मतलब आपके टेस्ट आते हैं। हमें नहीं पता कि आप में से कोई बीमार है, बेचारे ने कितनी मुश्किलों से दिया है। हमें नहीं सिर्फ पता कि आपके घर में किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, वो कितनी एफर्ट कर रही है और कितनी मुश्किलों से कर रही है। हमें ये भी नहीं पता कि कोई फारिगुल बाल है, वो बिल्कुल उनके ऊपर कोई ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं है, वो बड़े आराम से अपने टेस्ट की तैयारियां करती हैं और देती हैं। हमें नहीं पता, हम सबके एक जैसे ही नंबर लगाते हैं, हमने काटने हैं तो यहाँ से काटने हैं, यहाँ से करने हैं, हमने नहीं देखना किसकी मजबूरी क्या थी, किसकी क्या थी, किसके हालात क्या थे, कौन बीमार था, कौन बच्चों वाला है, कौन जॉब के साथ कर रहा है, हम इंसान जो हुए। लेकिन अल्लाह ताला उसके पास तो सारा इल्म है, उसने देखना है किसका अमल किन हालात में हो रहा था, कोई कितनी एफर्ट करता था, उसके घर में कितनी मुखालफत थी, फिर भी वो चलता गया इस रास्ते पर। और एक है उसके सारे हालात फेवरेबल हैं, फिर भी उसने परवाह नहीं की, कोई उसको पूछने वाला नहीं था, चौर पे भी उसका हुक्म चलता था, बच्चों पे भी उसका चलता था, फिर भी नहीं वो इस तरफ आती थी। अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि कौन बंदा कितनी सलाहियत रखता है, कितनी उसके पास अथॉरिटी है, कैसा उसको माहौल मिला है, उसका स्टेटस क्या है मुआशरे में, उसकी सिचुएशन क्या है, सब चीजों को अल्लाह ने कंसिडर करके हिसाब लेना है, उसकी वुस्सत से ज्यादा नहीं लेना। एक बंदा बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, वो पिसा हुआ है, वो किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बैठा हुआ, अल्लाह ने उसका हिसाब नहीं लेना कि तुम क्यों नहीं हज पे गए। अल्लाह ने ऐसे बंदे को नहीं कहना जो बेचारी एक औरत है
जो किसी क्या मुश्किलात के अंदर वो पड़ी भी है, उसका कैसा माहौल है। अल्लाह ने उसको ये नहीं कहा तुमने मेरे दीन की इशाअत के लिए क्या किया, वो तो बेचारी अपने सर्वाइवल में ही फंसी पड़ी है। एक पास उतनी नेमतें ही नहीं थी, उतनी उसके पास सलाहियत ही नहीं थी। अल्लाह ने नहीं उसको कहना कि तुमने अपनी तुम्हारी सलाहियत चाहे थी या नहीं थी, तुमने क्यों नहीं ये काम किया। नहीं, इस लिहाज से हम सबको अपने ऊपर देखना है कि हमारा कितना हिसाब होना है, हम कितने के मुकल्लफ हैं। जिनके पास खाने पीने को वाफिर है, छत है सब सब सर के ऊपर, अमनो अमान है, किसी अल्लाह माफ करे अल्लाह ताला हमारी नस्लों तक को भी बचाए, किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नहीं बैठे हुए, किसी रेफ्यूजी कैंप में नहीं बैठे हुए, अल्लाह इससे महफूज रखे। आफियत है हर तरफ, जहन भी चलता है, हाथ पैर भी अल्लाह ने सारे सलामत दिए हुए, आजा भी है, सांसें भी चल रही, कर क्या रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। अल्लाह ने उसके मुताबिक ही हिसाब लेना जितना कुछ अता किया हुआ। क्या जवाब देंगे, उससे ही उतना होगा जो बेचारा एक झुग्गी में बैठा हुआ है, ना उसके पास पंखा है, ना एसी है, ना कुछ है, वो बेचारा पता नहीं किस तरह अपनी जिंदगी काट रहा है, उससे उसके मुताबिक ही होगा। उसने कलमा भी पढ़ लिया तो ठीक है, वैसे बात कह रही हूँ। लेकिन जो जितनी ज्यादा एक उसमें है, इल्म भी है, समझ भी है, सबसे दुनिया के एडवांस मुल्क में भी रह रहे हैं, फैसिलिटीज भी इतनी है, फिर भी क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस अपनी अपने दुनिया बना रहे हैं, उसमें मजे कर रहे हैं ना। तो हर एक का फर्क फर्क होगा, और हम सोचें कि हमारा क्या होगा। इसीलिए ये भी है ना कि आखिरी जमाने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक बंदा दीन पे अमल करना इतना मुश्किल होगा कि एक बंदे के लिए दीन पे चलना ऐसे होगा जैसे हाथ में अंगारा लेना। तो वो फिर थोड़ा भी कर लेगा ना, उसके लिए इतने अजर हैं जैसे सहाबा कराम, वो उस वक्त उस हालात में दीन पे चल रहा है, तो उसका अजर कितना बढ़ गया, सहाबा बराबर हो गया। अल्लाह ने हालात भी देखने हैं, सिचुएशन आपकी क्या थी, आपका माहौल कैसा था। मगर इसमें कोई ये बहाना नहीं कर सकता, हम हमारे तो आज से हम बैठ जाते हैं क्योंकि हमें तो माहौल ही नहीं मिला। हमें तो हम क्या करते हैं, हमें मैं तो इसलिए अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं क्या करूं, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं, मैं तो ये काम इसलिए नहीं कर सकती, मेरा तो इतना जहन ही नहीं, मैं तो ये इसलिए नहीं ये इस हुक्म पे अमल कर सकती, हमें तो हमारे तो घर पे ये रिवाज ही नहीं है। ये नहीं, ये इसको हम एक्सक्यूज के तौर पे नहीं ले सकते आयत को। अगर अल्लाह ताला को पता है कि किसकी कितनी सिचुएशन है, अल्लाह के सामने बहाने नहीं कर सकते, इंसानों के सामने कर सकते बहाने, अल्लाह को पता मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं किया। अल्लाह को पता है कि फिर टाइम किस चीज के लिए नहीं था और किन चीजों के लिए फिर निकलता भी है, सब अल्लाह को पता है, सब अल्लाह की नजर में। उससे आप ना झूठ बोल सकते हैं, ना उसे कोई फ्रॉड कर सकते हैं, ये इंसानों को ही हम बेवकूफ बना सकते हैं। इसीलिए जो इंसान के वसवसे भी ऐसे आ जाए, एकदम दिमाग में ख्याल आ जाए, फिर इंसान कहता है अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी नहीं हिसाब होगा, क्योंकि वो इंसान की बस में नहीं था ना। जो चीज इंसान के बस में नहीं है वो उसके ऊपर अल्लाह नहीं पूछ करेगी। तो इंसान के बस में जितना कुछ होगा उसके ऊपर पूछो नहीं है, उसके ऊपर उससे हिसाब होगा। लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, कसबा और कसबत, एक है कसबा ता साकिन, तो वो इसलिए लगी हुई है कि मुअन्नस की, और एक है एक तसबा। तो बाज ने कहा इसके दरमियान कोई फर्क नहीं, बाज ने कहा थोड़ा सा फर्क है, एक तसबा में ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, जैसे अल्फाबेट ज्यादा बढ़ते हैं ना तो उस तरह से माने में भी वुसअत आ जाती है। तो उन्होंने कहा कसबा में मतलब कोशिश की, लेकिन एक तसबा में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, यानी कोशिश, एक्स्ट्रा कोशिश करना। तो इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं जो पहला है ना लहा मा कसबा, जब लहा भी होता है तो वो भी किसी चीज के हक में होने के लिए होता है, और अलैहा जब आता है ना, जैसे शहादत भी है, जैसे गवाही देना है, तो गवाही देना भी जब अला के साथ आ जाता है तो मुखालफत में होता है कि उसके अगेंस्ट गवाही देना, इसी तरह लहा मा कसबत उसके फेवर में जाएगा, यानी जो वो इंसान नेकी करेगा ना ये नेकी के लिए, और अलैहा मक्तसबत बुराई के लिए। तो लहा मा कसबत में क्या है, जो इंसान नेकी करेगा
थोड़ी सी भी कोशिश करेगा तो वो उसका अजर पाएगा, लाहा उसके लिए यानी उसका अजर। और अलैहा मक्तसबक, जो भी इंसान बुराई करेगा तो उसका भी उसके लिए ये, यानी उसी के ऊपर है उसका बवाल, आला है उसके ऊपर है उसका बवाल। अब आप कहेंगे कि कसबा में आपने बताया कि भाई कोशिश और इकतसबा में बहुत ज्यादा कोशिश हो गई, ज्यादा करने के बाद ताजो बढ़ गई, तो ये कैसे फिर नेकी में तो कोशिश करनी पड़ती है, नेकी में भी कोशिश करनी पड़ती है, मगर नेकी जो होती है ना वो इंसान की अगर फितरत सलीम है ना तो नेकी की तरफ वो इंक्लाइन होता है, नेकी उसको खुशी देती है। देखिए आप बड़े भी बुरे बुरे काम करने वाले थे, चोर डाकू ये भी होते हैं, वो भी गरीबों को जाके कुछ दे देते हैं, बड़ी बड़ी तवायफें भी होती हैं, ये भी होती हैं, वो भी देके चढ़ा देती हैं कहीं भी जाके। तो यानी इंसान को कितना भी बुरा हो ना उसको नेकी में एक खुशी हासिल होती है, तो वो नेकी करता है, तो नेकी की कोशिश उसके लिए आसान हो जाती है। लेकिन जो बुराई है इसके लिए इंसान को अपने जमीर को मारना पड़ता है, एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है, जमीर को पहले मारेगा तब ये बुराई का काम कर सकेगा। और फिर इंसान की जो नेकी है वो भी देखें, एक नेकी 10 लिखी जाती है, इरादा करने पे भी लिखी जाती है, और 700 गुना तक उसका अजर बढ़ जाता है, तो ये भी इंसान के लिए नेकी करने को आसान कर देता है। ठीक है, तो लहा मा कसबत आसानी से नेकी कमा सकता है, और अलैहा मा कसबत बुराई के लिए उसको कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरह हमें इससे एक और भी बात पता चलती है, वो ये कि देखें जब अल्लाह ताला फरमाते हैं ना उसके लिए वो ही है जो उसने किया, नेकी करने वाले के लिए जो उसने नेकी की, बुराई करने वाले के लिए जो उसने बुराई की उसका वबाल है। इसका मतलब है इंसान अपने किए का खुद ही भुगतेगा, जो उसने किया है वो खुद ही उसको काटेगा जो बोया। ऐसा नहीं हो सकता तुम चावल का बीज बो और गंदम उगा, नेकी करोगे तो नेकी पाओगे, बुराई करोगे तो बुराई पाओगे। तुम अपनी कमाई के खुद जिम्मेदार हो। ऐसे कभी लगता है ना कि हम किसी दूसरे को मजा चखा रहे हैं, जरा मैं इसको दबा के रखूंगी, देखो जरा मैं अब इसके साथ क्या करती हूँ, तो आज मेरा जोर चल रहा है ना तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत बड़ी ताकतवर हो गई, और मैं जिस तरह से भी चाहूंगी ना ये मेरा कर क्या सकती है। लेकिन वो समझता है वो दूसरे का नुकसान कर रहा है, दूसरे को शर पहुंचा रहा है, वो अपने आप को पहुंचा रहा है, अलैहा मक्तसबा। और नेकी करने को इंसान सोचता है मेरा बड़ा एहसान है कि मैं किसी के ऊपर नेकी कर रहा हूँ, या मेरा बड़ा एहसान है कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मेरा बड़ा एहसान है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, वो किसी के ऊपर एहसान नहीं अपने लिए ही कर रहा हूँ। समझ आई? तो ये जो भी तुम करोगे वो तुम्हारे लिए, नेकी करोगे तो नेकी पाओगे, जो तुमने कमाई की वो भी तुम ही कमाई करते हो, जो बुराई करोगे वो भी तुम्हारी ही कमाई है, इसलिए उसका भी तुम ही बवाल भुगतोगे। तो एक कसब जो है वो नेकी के लिए आया, दूसरा बुराई के लिए, फिर उसके बाद आगे दुआ है। अब अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखा दी, और जब अल्लाह ताला खुद सिखा रहा है ना कि देखो मेरे से मेरे बंदो इस तरह दुआ मांगो, इस तरह मेरे से दुआ मांगो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जिसने कबूल करनी है, जब वो खुद सिखाए तरीका तो इसका मतलब वो कबूल करना ही चाहता है ना। बाप बेटे को कह दे बेटा मैंने खजाना ना वहां रखा हुआ है, वहां रखा है, उसको जब पता बता दे तो वो क्या चाहता है कि बेटा जाके वहां से निकाल, मैंने ये चीज वहां छुपा के रखी हुई है ताकि वो वहां से जाके ले ले। अल्लाह ताला ने हमें खुद सिखाई दुआ ताकि हम इस तरह से मांगे और वो हमारी दुआ को कबूल कर ले। तो क्या फरमाया, रब्बाना ए हमारे रब, ला तो आखिरना ए हमारे रब, हमसे ना मुआखजा करना, हमसे ना पूछ करना, हमारी ना पकड़ करना, किस चीज के ऊपर, इन नसीना अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना या हम खता करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना भूल चूक। लेकिन कितना खूबसूरत इख्तिताम इस सूरत का है दुआ के साथ, कि अल्लाह ताला दुआ सिखा रहा है कि मेरे से मगफिरत मांगो, मुझे कहो कि अल्लाह हमसे ना पूछ
पूछ करना, हमें पकड़ना ना किस चीज पे जो हम भूल चूक कर दे। भूल चूक क्या होती है? भूल चूक ऐसे तो उर्दू में हम एक ही लफ्ज बोलते थे भूल चूक, लेकिन इसमें फर्क है। भूलता इंसान किस चीज को है? जिस जो पता होती है लेकिन वो भूल जाता है। और चूकता किसके ऊपर? ये कहते हैं निशाना चूक गया, जब चल पड़े थे लेकिन बस रास्ते से कुछ गलती हो गई, वो पता ही नहीं चला, जिहालत में जानते ही नहीं थे तो वो चूक गया। तो भूल और चूक, जो हम जानते थे और भूल गए, और जो नहीं जानते थे करना नहीं चाहिए था मगर कर लिया, उसके ऊपर भी ना पकड़। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जब ये आयत उतरी यहाँ पे, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने जो आप यहाँ पे मांगते हैं अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया। यानी जो इस आयत में हम मांगेंगे अल्लाह ने अता कर दिया वो। इसीलिए भूल चूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत से खता और निसियान पे मुआखजा नहीं होगा जब तक मैं उन्होंने ऐसे कामों को बुरा समझा। यानी इंसान अगर बुरा समझता है उन कामों को और उससे हो जाता है, लेकिन कोशिश के बावजूद बचना चाहता है लेकिन उससे हो जाता है, तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना, हम पे ना डालना क्या इस सुरन, कोई ऐसा बोझ, कोई किसी किस्म का ऐसा बोझ, इस सुरन है ना नकेरा, किसी किस्म का ऐसा बोझ, कमा हमलता हुआ लल्लदीना मिन कबलिना, अल्लाह जैसे तूने पिछली उम्मतों पे डाला था। यानी पिछली उम्मतों के लिए जरा मुश्किल अहकाम थे, देखिए उनके लिए रोजे कैसे थे, हमारे लिए तो सहरी होती है ना, उनकी सहरी नहीं होती थी, जब सो जाते थे तो बस अगला रोजा शुरू हो गया। उनके लिए ये था कि जैसे औरतें नापाक हो जाती थी तो उनको बिल्कुल ही अलग कर देते थे, हमारी शरीयत में ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए ये था कि अगर कहीं से कपड़ा पे कोई पेशाब या कुछ ऐसी चीज गिर जाती निजासत की तो उसको काट देते थे, धोने का नहीं था सवाल। उनके लिए पूरी जमीन मस्जिद नहीं थी, वो सिर्फ अपनी खास जगहों पे नमाज पढ़ सकते थे, इबादत कर सकते थे, हमारे लिए पूरी जमीन मस्जिद। आप देखें उनके लिए जरा सख्त अहकाम आते ना, शब्द का कानून आपको पता है, शब्द सैटरडे का पूरा दिन वो कोई काम नहीं कर सकते थे, हमारे लिए सिर्फ जुमे की एक घड़ी है जिसमें हम नहीं कुछ कर सकते, बाकी हम सारा दिन में कुछ भी कर सकते हैं। जो कोई काम कारोबार सिर्फ उस वक्त मना हमें किया गया, हमें बहुत सहूलत वाले अहकाम दिए गए, हमें सहूलत वाली शरीयत दी गई, जबकि उनके ऊपर जो शरीयत आई थी वो मुश्किल थी, वो अहकाम मुश्किल थे। तो हम कहते हैं ए अल्लाह हमारे पर वैसे बोझ ना डालना जैसे उनके ऊपर डाले गए थे, ए अल्लाह जैसे उनके मुश्किल मुश्किल चीजें थी शरीयत के अंदर वैसी ना हमारे ऊपर डालना। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर मुश्किल शरीयत नहीं भेजी, आसान शरीयत भेजी। हम ये सोचते हैं ना मुश्किल शरीयत है हमारी, मुश्किल है, नहीं, हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला ने आसानी वाले अहकामात भेजे। अब बाज लोग इसी को उल्टा मतलब ले लेते हैं, वो कहते हैं आसानी वाले अहकामात का मतलब ये अल्लाह ने तो आसान किया, हम क्यों उसको मुश्किल कर रहे हैं, यानी अब हमें अमल करने की जरूरत नहीं, अमल तो करना है। अगर अल्लाह ताला ने जितनी जो पिछली शरीयतों में अहकाम आते ना मुश्किल थे, वो कवानीन उनके मुश्किल, उनके पास दियत का ही नहीं था, उनको सिर्फ किसास ही था, ये दियत थी ही नहीं, तो हमारे दियत की अल्लाह ने सहूलत दी, या तो वो किसास ले या माफ करें, बस दैट्स इट, दो ऑप्शन थी। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारे अहकाम में बहुत सारी सहूलतें रख दी जो पिछली शरीयतों में नहीं थी। तो हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारे ऊपर वो वाला बोझ ना डालना जैसे पिछली शरीयतों में उनके ऊपर डाला गया, वो बर्डन डाले गए। अब्बास कहते हैं ये आखरत की सजा के बारे में है कि हमें आखरत की पकड़ वैसी ना डालना, ठीक है। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना भी, ए अल्लाह हमें वो बोझ ना उठवाना जिसकी हमें ताकत ना हो। यानी हर फर्द का मामला है कि या अल्लाह जो बोझ मैं नहीं उठा सकती, जो जिन चीजों के अंदर, जिन चीज जिन इम्तिहानों के अंदर नहीं मैं पूरी हो सकती, अल्लाह ताला मुझे उन इम्तिहानों में नहीं डालना, ऐसे ना इम्तिहान मुझसे लेना, अल्लाह जो मेरी ताकत से सिवा हो। तो ये भी एक इसर मैंने आपको बताया था ना, वो वाला बोझ जो बहुत सख्त हो, एक वो बोझ की बात आई जिसके अंदर सबके लिए यानी शरीयत के ऐसे अहकाम देना, और उसके बाद जो मेरी ताकत में ना हो, जिन चीजों को मैं ना हैंडल कर सकूं, अल्लाह ऐसे बोझ ना डालना, ना ऐसे इम्तिहान, ना ऐसी कोई चीजें
ऐसी बोझ ना जो मैं उठा ही ना सकूं, ऐसी मुश्किलात, ऐसी आजमाइशें जिसमें मैं फेल हो जाऊं। वाफ अन्ना, ए हमारे रब, वाफ अन्ना, हम सबसे दरगुजर कर देना। और देखिए इसमें भी जैसे एक दिन सिरातल मुस्तकीम है ना, उसमें भी प्लूरल में है दुआ, अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखा। इसी तरह यहां पर भी आप देखें प्लूरल में, हम सबको, यानी एक मोमिन जब मांग रहा होता है ना तो वो सबके लिए मांग रहा होता है, अपने सारे मोमिनों के लिए, क्योंकि मोमिन हम दर्द होता है, खैर ख्वाह होता है दूसरे मोमिनों को, वो दूसरों से हसद करने वाला, ये मुझे मिल जाए बस दूसरी और को ना मिले, ये ऐसा नहीं होता। उसका दिल कितना बड़ा होता है कि वो सबके लिए दरगुजर मांगता है, बख्शिश मांगता है। आफ क्या मतलब होता है कि किसी की रस्सी दराज कर देना, नहीं अल्लाह फौरी मेरी पकड़ना कर देना, अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर करना, चश्म पोशी कर लेना, वो फिर लाना बख्शिश। और गफारा का मतलब क्या होता है, मेगफर, ये इसको आनी टोपी को कहते हैं, जैसे हेलमेट जो होता है जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है कोई भी, पहले जमाने के अंदर तो लोहे के वो पहनते थे खोद से, जिनसे तलवार से बचते थे, तो ये वो भी ढांप लेते हैं ना इंसान को, तो अल्लाह मेरे गुनाहों को ढांप देना कि ये ना हो कि मेरे जग हसाई हो कयामत के दिन के लोग कहें ये बड़े नेक बनते थे, ये देख लो इनके काम। उनके आज भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घरों की बातें रिकॉर्ड होके बाहर जाए, हम कहते हैं हम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते सारा दिन, और सोचे आमालनामा खोल के सारी दुनिया के सामने रख दिया जाए, क्या ये करती थी, कैसे उठती थी, कैसे बैठती थी, क्या बोलती थी घर में, क्या इसकी सोचें थी, क्या ये दूसरों के बारे में सोचती थी, ये सब हमारे सबके सामने आ जाए, तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। चाहे बाद में माफी भी हो जाए, ये शर्मिंदगी है ना इसके अंदर। इंसान कहता है ला मुझे इस शर्मिंदगी से बचा लेना, माफ भी कर देना, ढांप भी देना, माफ करके ऐसे नहीं हो कि दिखा के माफी दी जाए, अल्लाह ढांप दे। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो इंसान अल्लाह से मांगता है वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामा, अल्लाह क़ियामत के दिन की रुसवाई से हमें बचाना, कि हमें ढांप के हमें रुसवा होने से बचा लेना, वरहमना, और हमें हम पर रहम कर देना, इसलिए कि रहम इंसान जितनी भी नेकी कर ले फिर भी उसको अल्लाह की रहमत की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता, वो अपने कामों के ऊपर नहीं इंसान कोई भरोसा कर सकता कि मैंने बड़ा अच्छा कर दिया अब तो मुझे कोई फिक्र की बात नहीं, नहीं अल्लाह मुझे फिर भी तेरी रहमत चाहिए।
रहमत के
तो
बगैर जन्नत
हमें
में नहीं जा सकता,
सबको
वो अपने
इंसान कहता है कि हम सब पे रहम फरमा लेंगे, अंत मौलाना, ए अल्लाह तू हमारा मौला है। मौला मतलब, मौला का माना क्या होता है, वली से है मौला, और वली इंसान का मददगार, इंसान का हिमायती, इंसान का पुश्त पना, मुश्किल कुशा, ये सब माने मौला में आते हैं। और जब इंसान कहता है ना तू ही मेरा मौला है, एला तूने ही तो मुझे मेरी पुश्त पनाही करनी है, एला तू ही मेरा केयर टेकर है, तेरे सिवा तो कोई भी नहीं है जो मेरी केयर करने वाला, एला तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा हामी है, तू ही मेरा मददगार है, तू ही मुझे बचा सकता है हर शर से, तू ही मेरी हिफाजत कर सकता है, तू ही मुझे सपोर्ट कर सकता है। सपोर्टर भी वो होता है, हिमायती, पुश्त पना, सपोर्टर, कोई बात हो गई, कि तू ही मेरी सपोर्ट कर सकता है हर किस्म के नुकसान से, तू ही मुझे बचा सकता है, लोगों के खिलाफ भी तू ही मेरी मदद कर सकता है। फंसुरना अल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह तू मेरी मदद फरमा काफिर कौम पर। यानी पहले कहा कि अल्लाह तू मौला है मेरा, तू ही मेरा मौला, मेरा तो और कोई मौला नहीं है ना। सहाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा से, जिस वक्त ओहद के दिन काफिर बड़े फखर से कह रहे थे कि हमारे लिए उल्लाना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए तो उज्जा है तुम्हारा तो कोई उज्जा ही नहीं है, क्योंकि उनका तो वो बड़ा बुत था ना, तो बड़ा उनको मान था, हमारा तो उज्जा है तुम्हारा कोई उज्जा नहीं है कि जो तुम्हारी मदद करे। तो आपने फरमाया सहाबा से तुम कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, ये इतनी तस्कीन के अल्फाज है ना एक मोमिन के लिए,
कि जहां पे भी वो दुनिया में किसी काफिर से शिकस्त खाता है तो वो यही कहता है, जितना मर्जी कोई इस दुनिया में कामयाबी के बड़े जीनों पे चढ़ जाए, फिर भी हम हारे नहीं है, क्योंकि अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। फिर भी जीत हमारी ही है, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है ना, वो हमारा मौला है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा हिमायती, हमारे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारे साथ अल्लाह ही नहीं, सबसे बड़ी ताकत वो रब जिसके साथ हो जाए, फिर और उसको क्या चाहिए, फिर और उसको क्या चाहिए। वो कभी नाकाम हो सकता है, चाहे दुनिया की नजर में कितना भी नाकाम हो, चाहे दुनिया में कोई रुल गया हो, चाहे दुनिया कोई उसको पूछती ना हो, लेकिन वो जब कहता है ना मान के साथ, अंता मौलाना, तो इसके अंदर बड़ा मान है, तू हमारा मौला है, यानी तू हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमने तो तुझे मौला माना है, हमारा तो तू मौला है अल्लाह। ये सारे जितना मर्जी कह दें, तुम क्या मुसलमान हो, तुम क्या ये हो, तुम तो जलील हो दुनिया के अंदर, अल्लाह हो मौलाना, बोला मौलाना को। तो मोमिन बड़े मान से जब ये कहता है ना, तो अल्लाह भी उसकी बात को कबूल करता है। और यहाँ पे इन आयात में हर बात पे अल्लाह ताला फरमाता है, कद फालतू, मैंने कबूल कर लिया, मैंने कर दिया जो तूने मांगा है, मैंने कर दिया जो तूने। तो जब ये आप दुआ पढ़े तो सोचें कि अल्लाह ये फरमा रहा है हमारे लिए, जो मैं ये कह रही हूं ना, अल्लाह ताला वैसे वैसे मेरी दुआ को कबूल कर रहा है। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती कि उसने खुद फरमाया कि तुम कहो हे अल्लाह तू मेरा मौला। तो जब दुख की घड़ी आए, जब तकलीफ की घड़ी आए, अंत मौलाना, अल्लाह मेरा तो कोई नहीं और मददगार, तू ही है मेरा मददगार, तू ही है मेरा हिमायती, तू मेरा मुश्किल कुशा है, मैंने और जाना कहाँ है। फर्म सुटना अल कौमिल काफिर, अल्लाह हमारी मदद फरमा काफिर कौम पे, यानी काफिरों पे हमारी मदद फरमा। ये काफिर जो है वो जब हमें लेट डाउन करने लगे, तू हमारी मदद फरमा। काफिर अपने दलाइल लेकर आए, तू हुज्जत से हमारी मदद फरमा, कि हमारे पास ऐसी ऐसी हुज्जत हमें इतनी स्ट्रॉन्ग दे दे कि हम उनके दलाइल का जवाब दे सके। अल्लाह काफिर जब हमारे ऊपर जोर आजमाई करें, जुल्म करें, अल्लाह तू हमारी मदद, तो हर तरह की मदद इसमें आ गई, चाहे अपने कॉल से है, चाहे फेल से है, हर तरह की मदद अल्लाह हम तुझसे ही मांगते हैं कि तू हमारी मदद फरमा इनके ऊपर। तो इसके ऊपर इस सूरत का इख्तिताम होता है और हम आमीन कहते हैं, इसलिए कि सही है में ये है कि इस दुआ में ये रब्बना ला तुआखिज़ना से अख्ताना तक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ चुके तो आमीन कहा करते थे। अल्लाह ताला भी इसके ऊपर जब फरमाता है कि अच्छा मैंने कबूल किया, मैंने ऐसा ही कर दिया, तो हम आमीन कहें। हर जुमले पे अल्लाह ताला फरमाता है, हर जुमले पे सोचें, जब आप कह रहे हैं रब्बाना ला तुआखिज़ना इन्ना सीना अव अख्ताना, तो अल्लाह ताला फरमाता है अच्छा ठीक है ये मैंने कबूल किया, फिर अगले जुमले पे भी अल्लाह ताला यही फरमाता है, फिर अगले जुमले पे भी अल्लाह ताला यही फरमाता है। तो हदीस से दलील पता चलती है कि अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाता है, इसलिए इसके साथ और भी इसको कह के फिर और भी दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ये कबूल फरमा रहा है तो और भी दुआएं कबूल कर। हम कहते हैं अल्लाह ताला जितनी हमारी दुआएं हैं, जितनी हमारी हाजतें हैं, जितनी हमारी जो भी हमारी जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, अल्लाह तो अंता मौलाना, अल्लाह ताला तू हमारा मौला, अल्लाह हमारी सारी दुआओं को कबूल कर लेना, हमारी सारी हाजतों को पूरा कर देना, हमारे सारे ही मसलों को हल कर देना, हमारी सारी मुश्किलों को आसान कर देना, हमने जितनी दुआएं रमजान मुबारक में मांगी उन सबको हमारे लिए कबूल कर देना। अल्लाह हर वो चीज जो हमें जन्नत से करीब कर दे, हर कॉल और हर वो फेल हम उसका सवाल तुझसे करते हैं, और हर वो चीज जो जहन्नुम से करीब करे अल्लाह ताला उससे पनाह मांगते। अल्लाह हर वो खैर जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, हमारे इल्म में भी नहीं है लेकिन तू जानता है, वो हमारे लिए खैर है, अल्लाह हमें अता फरमा दे। हर वो शर जिसको हम जानते हैं या जिसको हम नहीं जानते, बहुत सारे शर है जिनको हम जानते ही नहीं, अल्लाह ताला उनसे तू हमें अपनी पनाह में ले लेना, अपनी हिफाजत में ले लेना, कि तेरी पनाह से बड़ी पनाह कोई नहीं और तेरी हिफाजत से बड़ी हिफाजत कोई नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला हम
इन आयात की तिलावत सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू इस सूरत का थोड़ा सा देना चाहूंगी 5 मिनट में। जी तिलावत सुनाएं।
ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.